लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ले तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। श्रोताओ, हम फ्रतेल्ले तुत्ती के छठवें अध्याय समाज में वार्ता और मित्रता की चर्चा कर रहे हैं। एक बहुलवादी समाज में वार्ता वह सर्वोत्तम रूप है जिसे हमें सदैव अल्पकालिक सहमति से ऊपर उठकर सुदृढ़ता और सम्मान की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। ऐसी वार्ता को चाहिए कि वह अपने में धनी और स्पष्ट विचारों, तर्क वितर्क, विभिन्न दृष्टिकोणों और अलग अलग क्षेत्रों से अपने ज्ञान की बातों को साझा करे जो दिशा निर्देशन का आधार बने। यह अपने में इस विश्वास को दरकिनार कर सकता है कि हम कुछ निश्चित मूलभूत सच्चाइयों तक पहुंच सकते हैं जिसे अपने में कायम रखा जा सकता है। कुछ मूल्यों को अपने में धारण करना यद्यपि अपने में एक बड़ी आत्मनिरीक्षण की मांग करती है, हमारे नैतिक जीवन के आधार को सशक्त और मजबूत बनाता है। एक बार जब हम उन आधारभूत मूल्यों को स्वीकारते और उन्हें वार्ता तथा सहमति के आधार पर लागू करते हैं तो हम इस बात का अनुभव करते हैं कि वे मूल्य हमारे लिए सहमति से बड़े होते हैं। वे हमें अपनी ठोस परिस्थिति से परे ले चलते और जो अपने में अपरिहार्य होते हैं, उनके अर्थ और दायरे के संबंध में हमारी समझ बढ़ सकती है और इस संदर्भ में सर्व सहमति एक वास्तविक आयाम बनती है। उन्हें अपने अंतर्निहित अर्थ के आधार पर स्थायी माना जाता है। श्रोताओं, अगर कोई चीज हमेशा समाज के अच्छे कामकाज में मददगार है तो ऐसा नहीं कि एक स्थायी सत्य बुद्धि की पहुंच से परे हो। मनुष्य और समाज की प्रकृति में निहित हमारे विकास और अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कुछ बुनियादी संरचनाएं मौजूद हैं। इस प्रकार कुछ आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें संवाद के माध्यम से खोजा जा सकता है। भले ही कड़ाई से कहें, वे आम सहमति से नहीं बनाई जाती हैं। यह सत्य है कि कुछ नियम समाज के जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। वे हमारे लिए इस बात का संकेत हैं कि वे अपने में अच्छे हैं। अतः समाज के हितों, आम सहमति और स्पष्ट सत्य की वास्तविकता का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी इन तीन वास्तविकताओं में तब सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और वार्ता के माध्यम लोग किसी मुद्दे की तह तक जाने से नहीं डरते हैं। श्रोताओं, दूसरों के जीवन का सम्मान हर हाल में बहाल किया जाए, यह इसलिए नहीं कि मानव सम्मान किसी की खोज या परिकल्पना है, लेकिन इसलिए कि यह मानव जीवन का अंतरिम अंग है जो किसी भी भौतिक वस्तुओं और परिस्थितियों से अहम है। यह हमसे इस बात की मांग करती है कि उनके साथ एक अलग रूप में व्यवहार किया जाए। हर मानव अपने में एक अपरिहार्य सम्मान को धारण करता है जो सभी संस्कृति परिवर्तनों से अलग मानवीय स्वभाव का अंग है। इस कारण मानव सम्मान हर परिस्थिति और इतिहास में सदैव एक ही बना रहता है और किसी भी विशेष परिस्थिति में किसी को यह अधिकार नहीं कि कोई किसी के मानवीय सम्मान का दमन करे या उसके विरुद्ध कोई कार्य करे। बुद्धि अपने चिंतन के माध्यम चीजों की खोज करते हुए उनका अनुभव और उनसे वार्ता करती और उनकी वास्तविकता की सच्चाई तक पहुंचती है, जो उन्हें परे ले जाती और वैश्विक नैतिकता के आधार पर स्थापित की जाती है। अज्ञेयवादियों के लिए यह नींव बुनियादी और गैर पराक्रम नैतिक सिद्धांतों पर एक ठोस और स्थिर सार्वभौमिक वैधता प्रदान करने के लिए पर्याप्त साबित हो सकती है, जो आगे की आपदाओं को रोकने के लिए काम करती है। विश्वासियों के रूप में हम इस बात से आश्वस्त हैं कि मानव का स्वभाव नैतिक सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और अंततः ये वे हैं जो उन सिद्धांतों को एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसका परिणाम नैतिक कठोरता नहीं है और न ही यह किसी एक नैतिक प्रणाली को लागू करने की ओर ले जाता है, क्योंकि मौलिक और सार्वभौमिक रूप से मान्य नैतिक सिद्धांतों को विभिन्न व्यवहारिक नियमों में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार संवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। श्रोताओ, जीवन सभी अवरोधों के बावजूद अपने में एक मिलन की कला है। संत पापा सदैव एक मिलन की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जो विभिन्नताओं और विभाजनों से परे जाती है। इसका अर्थ एक बहुआयामी बहुफलक का निर्माण करने हेतु कार्य करना है, जिसके विभिन्न पक्ष अपनी विभिन्नताओं में भी एक एकता का निर्माण करते हैं, जहाँ संपूर्ण सदैव एक हिस्से से बड़ा होता है। बहुफलक की निशानी एक समाज में विभिन्नताओं के सह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें एक दूसरे के लिए पूरक बनाती, जिसके फलस्वरूप हम आपसी आदान प्रदान के द्वारा धनी बनते हैं, यद्यपि हमारे बीच असहमतियां और संदेह बने ही रहते हैं। हम में से हर कोई दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कोई अपने में व्यर्थ का नहीं है और न ही किसी को नष्ट किया जा सकता है। यह अपने में इस बात को भी सम्माहित करता है कि हम अपने जीवन में उन लोगों को भी सम्मिलित करें जो जीवन के अंतिम छोर पर हैं, क्योंकि वे जीवन की चीजों को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। वे वास्तविकता के पहलुओं को उन नजरों से देखते हैं जो सत्ता की शक्ति से अदृश्य है, जहां भारी निर्णय लिए जाते हैं। संस्कृति वह शब्द है जो लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। यह अपने में सबसे सुखद विश्वास और जीवन शैली है। लोगों की संस्कृति एक अमूर्त विचार से कहीं बढ़कर है। इसका आशय उनकी चाहों, उनकी अभिलाषाओं और अंततः उन बातों से है जिनके अनुरूप वे अपने जीवन को जीते हैं। मिलन की संस्कृति के बारे में बातें करने का अर्थ है कि हम एक समुदाय के लोगों के रूप में दूसरों से मिलने के लिए उत्सुक रहें, मिलन हेतु अवसर की तलाश करें, सेतु का निर्माण करें, एक परियोजना की रूपरेखा तैयार करें जो सबों को शामिल करता हो। ऐसा करना हमारे जीवन को और हमारे जीवन शैली के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस संस्कृति की विषय वस्तु लोग हैं, जो पेशेवर और संचार माध्यमों की मदद से बाकी को शांत नहीं करते हैं। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
We'll be right back. याद रखो के वही एक खुदा है। चारागाह से हम सब हैं आए,
हम दो सना के हम गीत गाए।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने दादा दादी और बुजुर्गों के प्रथम विश्व दिवस के लिए संदेश प्रकाशित किए जाने के अवसर पर ट्वीट प्रेषित कर सभी दादा दादी और बुजुर्गों को एक नए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संदेश में लिखा, प्यारी दादियों, प्यारे दादाओं, प्रभु का सामीप्य आप सभी को, चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो, एक नई यात्रा शुरू करने की शक्ति प्रदान करेगा। स्वप्न देखने, याद करने और प्रार्थना करने की यात्रा। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट संदेश में लिखा, महामारी के महीनों के समान सबसे अंधेरे पल में भी प्रभु अपने स्वर्ग दूतों को हमारी एकाकी में सांत्वना देने भेजते हैं और याद दिलाते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। दादा दादी एवं बुजुर्गों के लिए प्रथम विश्व दिवस 25 जुलाई को मनाया जाएगा। दादा दादी एवं बुजुर्गों के लिए प्रथम विश्व दिवस को लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित परम धम्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल केविन फारेल ने कहा कि यह एक उत्सव है, हमें सचमुच इसकी आवश्यकता थी। इस कठिन साल को पार करने के बाद हमें निश्चय ही दादा दादी एवं पोता पोती तथा युवा एवं बुजुर्गों को मिलकर खुशी मनाना है। कार्डिनल फारेल ने कहा, उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में पिता कहते हैं, हमें आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित था। उन्होंने कहा कि मुश्किल भरे महीनों के बाद एक नया पृष्ठ खुला है, बुजुर्गों के प्रति कोमलता की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, वायरस उनके प्रति अधिक कठोर रहा है। यही कारण है कि पोप उम्मीद करते हैं कि एक दूत उनके पास आकर उनकी एकाकी में उन्हें सांत्वना देगा, और वे कल्पना करते हैं कि यह दूत उन युवाओं के समान होगा जो बुजुर्गों से मुलाकात करते हैं। दूसरी ओर यह दिवस उस कोमलता की भी याद दिलाता है जिसको दादा दादी अपने पोते पोतियों के लिए प्रकट करते हैं। कार्डिनल ने कहा, कोमलता न केवल व्यक्तिगत अनुभूति है जो घावों को आराम देती, बल्कि दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका है जिसको लोगों के बीच भी महसूस किया जा सकता है। उन्होंने खेद प्रकट किया कि हम अकेले जीने के आदि हो गए हैं, एक दूसरे को अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा के रूप में देखते हैं। अपने प्रेरित पत्र फ्रतेली तुत्ती में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हमारा समाज अब टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, जबकि कोमलता जीवन का एक रास्ता है जो हृदय से, अनुभूति की नजर से तथा विचारों एवं सच्ची उदारता में परिणत होने से उत्पन्न होता है। दादा दादी के लिए समर्पित विश्व दिवस की विषय वस्तु है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कार्डिनल ने कहा कि यह एक वादा है जो हम सभी के लिए प्रभु की ओर से मिला है, और हम प्रत्येक जन अपने भाई बहनों के लिए इसे दोहराने हेतु बुलाए गए हैं। कार्डिनल ने बतलाया कि संदेश में दादा दादी और बुजुर्गों के लिए प्रेम और मांग दोनों है। संत पापा उन्हें स्नेह से संबोधित करते हैं, किंतु उनकी बुलाहट को नवीकृत करने का भी आह्वान करते हैं। इस बुलाहट की तीन विशेषताएं हैं, स्वप्न, स्मृति और प्रार्थना। कार्डिनल ने कहा कि दादा दादी और बुजुर्गों के लिए कलीसिया में एक सम्मानपूर्ण स्थान है और यह दिवस इसे पुष्ट करना चाहता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दादा दादी एवं बुजुर्गों के लिए विश्व दिवस हमें बुजुर्गों के लिए प्रेम में बढ़ने हेतु मदद करेगा तथा उन्हें हम कोमलता के शिक्षक, राहों पर मार्गदर्शक एवं प्रज्ञा के स्रोत के रूप में देख पाएंगे। इस तरह पूरी कलीसिया दादा दादी और बुजुर्गों से कहेगा, हम सदा आपके साथ हैं। इस बीच वैटिकन के प्रेरित प्रायश्चित विभाग ने एक आज्ञाप्ति जारी कर कहा है कि विश्वासों की भक्ति बढ़ाने एवं आत्माओं की मुक्ति हेतु 25 जुलाई 2021 को दादा दादी एवं बुजुर्गों के प्रथम विश्व दिवस के उपलक्ष्य में शोधकाग्नि की आत्माओं के लिए दंड मोचन प्राप्त करने का अवसर होगा। इस दंड मोचन को प्राप्त करने के लिए सामान्य शर्तें हैं, पाप स्वीकार करना, पौत्री उखरिस्त में भाग लेना और परम प्रसाद ग्रहण करना तथा संत पापा के मतलबों के लिए प्रार्थना करना। दंड मोचन को पोप फ्रांसिस द्वारा संत पेत्रस महागिरजाघर में अर्पित समारोह ख्रिस त्याग में भाग लेने, उस दिन कठिनाई में पड़े बुजुर्ग भाई बहनों से मुलाकात करने अथवा वर्चुअल रूप से उनसे संपर्क करने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन लोगों को भी यह दंडमोचन प्राप्त होगा जो किसी गंभीर कारण से घर नहीं छोड़ सकते और दंडमोचन प्राप्त करने की तीन शर्तों को शीघ्र पूरा करने की इच्छा से विश्व दिवस के पौत्र कार्यों में आध्यात्मिक रूप से सहभागी होते हैं और करुणावान ईश्वर को अपनी प्रार्थना, दुख एवं जीवन की कठिनाइयों को चढ़ाते हैं। संत पेत्रस महागिरजाघर के महापुरोहित कार्डिनल मौरो गंबेत्ती ने वैटिकन के महागिरजाघर में प्रतः अर्पित किए जाने वाले मिसा बलिदानों के ताजा नियमों से अवगत कराया। कार्डिनल गंबेत्ती ने याद दिलाया कि धर्म विधि के कार्य व्यक्तिगत कार्य नहीं हैं तथा पुरोहितों के लिए यह उचित है कि वे सह अनुष्ठाता के रूप में मिसा में भाग लें। साथ ही उन्होंने अपवादों और पुरोहितों तथा विश्वासों दोनों के सामान्य एवं असाधारण रूप में संस्कार के लिए समूहों से वैध अनुरोधों को स्वीकार करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। प्रावधानों के अनुसार 7 से 9 बजे के बीच पुरोहित व्यवस्थित स्थानों पर सूचीबद्ध मिसा बलिदानों में सह अनुष्ठाता के रूप में भाग ले सकते हैं। कोलंबिया की कलीसिया ने रविवार को पिता दिवस मनाया। यह दिवस परंपरागत रूप से हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है तथा पिताओं के कार्यों को सम्मान दिया जाता है। कोलंबिया की कलीसिया ने 20 जून को पिता दिवस मनाते हुए पौत्र परिवार के संरक्षक एवं पिताओं के आदर्श संत जोसेफ की याद की। धर्माध्यक्षों की वेबसाइट पर प्रकाशित संदेश में बोगोटा के महाधर्माध्यक्ष लुइस जोश रुंडा ने सभी पिताओं को निमंत्रण दिया है कि वे समर्पण के साथ कार्य करें तथा अपने कार्य को पौत्रता के रास्ते के रूप में बदलें। उन्होंने लिखा, काम सजा नहीं है, काम हमें सम्मान प्रदान करता और हमें शुद्ध करता है, जैसा कि संत जोसेफ के साथ हुआ। इस प्रकार कार्य आध्यात्मिकता का स्रोत है। महाधर्माध्यक्ष ने पिताओं को आमंत्रित किया है कि वे संत जोसेफ के उदाहरणों पर चलते हुए परिवार से प्रेम करने और उनका मार्गदर्शन करने के मिशन को पूरा करें। उन्होंने कहा, हमें उस कोमलता की आवश्यकता है जो हमें सुधारता, प्रेम करता और हमारा मार्गदर्शन करता है। यही पिताओं का मिशन है। हमें ऐसे पिताओं की जरूरत है जो घर में अपने ही परिवार में मिशनरी हों। महाधर्माध्यक्ष रुंडा ने इस बात को भी रेखांकित किया कि एक पिता का अपनी पत्नी, अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ प्रार्थना करना कितना सुंदर है, जो अपने आप को ईश्वर का साधन बनाते हैं। उधर एंग्लिकन और कार्तिक धर्माध्यक्षों ने फ्रांस में प्रवेश करने और ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे बिना दस्तावेज के सभी कमजोर अप्रवासियों के साथ बेहतर बर्ताव के लिए अपनी अपील दोहराई। विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर 20 जून को प्रकाशित एक संयुक्त बयान में 6 धर्माध्यक्षों ने याद किया है कि ये अजनबी जो अपनी मातृभूमि से निर्वासित हैं, हमारे साथी इंसान हैं, जिन्हें जगह पाने का हक है जहां वे प्रतिष्ठा के साथ रह सकें तथा समाज के लिए अपना योगदान दे सकें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।